ए, ये क्या है? तुम लोगों ने बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके रास्ता क्यों हरा दिया? निकालो इसे।
बिगड़ी हुई कार रास्ते को नहीं तो क्या आसमान पड़ेगी?
घर से निकलते वक्त देखकर क्यों नहीं चलते कि ये घास लेट का डिब्बा रास्ते में कहीं भी लेट सकता है?
ओ मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो, जानते हो मैं कौन हूँ?
अजी, आप किसी भी रियासत की राजकुमारी हो तो मेरे ठेंगे से। ए, मुंह से बात करो, हाथ नहीं लगाना।
ईशा, प्लीज, क्यों झगड़ा मोल ले रही हो?
हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ये हमारी गाड़ी ठीक कर दे।
रिक्वेस्ट करें मेरी ज्योति।
ऐसा, ज्योति ठीक है तो फिर जाओ पैदल, ना तुम रहोगी ना तुम्हारी ज्योति। अब हटाओ या खटारा, नहीं तो 120 मील की स्पीड से आकर इतनी जोर की टक्कर मारूंगा कि ये घासलेट का डिब्बा कचरे के डिब्बे की तरह उड़ता हुआ दूर चला जाएगा।
नो 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 नो, प्लीज, नाराज मत होइए, हमारी मदद कीजिए।
हाँ, ये हुई ना इंसाने वाली बात। चलो बाजू हटो, बाजू हटो। शाबाश, खुल जा सिम सिम।
गाड़ी ठीक हो गई?
हाँ, तुम्हारी जबान सुधर गई तो तुम्हारी गाड़ी भी सुधर गई।
थैंक यू वेरी मच।
ए मिस्टर, चाबी कहाँ है?
यहाँ।
दो।
पहले मेरी मजदूरी दो।
ओह, I'm sorry। कितनी?
100 रुपए।
मतलब एक नट टाइट करने के लिए 100 रुपए?
जी नहीं, नट टाइट करने का 1 रुपया, उसे ढूंढ निकालने के 99 रुपए, 99 रुपीज इन इंग्लिश।
अगर मैं ना दूं तो क्या करोगे?
मैं इस चाबी को ऐसे फेंकूंगा कि सीधे उस पहाड़ी के पीछे चली जाएगी। फेंकूं?
ये तो जुल्म है।
जी नहीं, इंसाफ है।
लो।
आ, 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 अब मैं ये ऐसे नहीं लूंगा।
फिर कैसे लोगे?
नोट को होल से लगाकर किस करके दो, तब लूंगा।
यो?
यू वो कुछ नहीं, नोट को किस करो, नहीं तो चाबी चली अभी। लवली, थैंक यू।
दो।
लो।
तोबा तोबा तोबा, क्या रिश्तेदार मिले हैं। जड़ काटते जाते हैं और झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए ऊपर से पत्तों पर पानी डालते रहते हैं। दरअसल कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। रिश्तेदार समझकर तुम लोगों को घर में जगह दे दी, उसकी सजा मुझे मिल रही।
क्या जड़ काटी है भैया, क्या बुरा किया है आपके साथ जो आज आप ऐसे ताने दे रहे हैं?
ताने दे रहा हूँ? रहम खाकर तुम्हें इस घर में जगह दे दी, ये मेरी सबसे पहली गलती थी। तुम्हारे पति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ये मेरी दूसरी गलती थी। और उसके बाद मेरे बिजनेस का जो ये हाल बना रहे हैं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है।
क्या बुरा हाल कर रहे हैं जीजा जी? लगता है आपको हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। वरना आप बताइए, फैक्ट्री की जितनी भी आमदनी आती है सब लाके आपके चरणों में डाल देता हूँ। उसमें से एक पैसा खाना कुत्ते का गोश्त खाने के बराबर है।
वो कुत्ते का गोश्त, बिल्ली का गोश्त, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री की आमदनी अचानक क्यों कम हो गई, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास?
हाँ है। आजकल के मजदूर बहुत बेईमान हो गए हैं। पहले दिल लगा के काम करते थे, अब दिमाग से काम करते हैं। पहले भोले होते थे, अब सियाने हो गए, अकलमंद हो गए।
अकलमंद वो नहीं अजीत, तुम हो गए हो। मजदूरों की मांग क्या होगी? साल भर में सिर्फ एक बार बोनस, लेकिन तुम जैसे लोग तो सुबह से शाम तक बोनस ही निकालते रहते हैं। माल खुद जमा कर रहे हो और जिम्मेदार मजदूरों को ठहरा रहे हो। कल सुबह तक पूरा अकाउंट मेरे सामने आ जाना चाहिए।
डैडी, डैडी।
आज इतनी देर क्यों हो गई बेटी?
हाँ, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई।
तो फिर तुम आई कैसे?
एक मैकेनिक मिला, उसे गाड़ी रिपेयर कराई। मगर उसने कितना बड़ा धोखा दिया मालूम है डैडी? सिर्फ एक नट टाइट किया और 100 रुपए ले लिया।
एक नट टाइट करने का 100 रुपया? ऐसा बेईमान आदमी था? अब पिताजी, आपका कोई भाई जिंदा है क्या? अब
देखो बेटी, ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं, जमाना बड़ा खराब चल रहा है। तू हमेशा रंजीत को अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले जाया कर, आखिर ये तेरा मंगेतर है बेटी।
वाह, क्या मंगेतर है! ऐसे मंगेतर को बॉडीगार्ड बनाकर ले जाऊंगी तो बाहर जाकर इनकी ही बॉडी को गार्ड करना पड़ेगा।
तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? अरे अपने साथ रखो तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। गाड़ी में बिठाओ, ड्राइवर बन जाऊंगा। पीछे बिठाओ, क्लीनर बन जाऊंगा। गाड़ी बिगड़ा उसे धक्का लगाऊंगा और तुम्हें को छेड़ो तो उसका खून पी जाऊंगा।
खून पी जाऊंगा, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। जो काम आपने बताए, पैसा फेंक के तो वो काम कोई भी कर सकता है।
मगर मैं फोकट में कर दूंगा।
फोकट में करोगे? अरे यहाँ बैठ के फोकट में 10 मन अनाज खाते हो, वो कुछ नहीं।
मामा जी, देखो कैसी बातें करती है ये।
बिल्कुल सही बात कर रही है सन्यासी महाराज।
मामा जी, आप क्यों हमेशा मुझे सन्यासी कहते रहते हैं? एक बार मेरी और निशा की शादी करा दीजिए, फिर देखिए मैं कैसा संसारी आदमी बनता हूँ।
अजीजा जी, बात निकली तो मैं भी जबान हिला रहा हूँ। निशा की और इसकी शादी करवा दीजिए ना, स्वर्गवासी भाभी की आत्मा को शांति मिल जाएगी।
मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आत्मा को किस बात से शांति मिलेगी, किस बात से दुख मिलेगा, ये सब कुछ मुझे मालूम है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
50 50 50 100 100 100 100।
हम लोग यहाँ से चोरियां करके माल उड़ाते हैं, उसकी रिपोर्ट गुल साहब को कौन देता रहता है?
साहब मुझे कुछ नहीं मालूम।
देख बे, मुझसे बेईमानी मत करना, मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ। बेईमानी में शैतान को ट्यूशन देता हूँ, मुझसे झूठ बोलेगा तो सारे इल्जाम उसको फंसा दूंगा।
साहब मैं माँ की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक किसी को एक शब्द नहीं बोला। ये काम उस इंजीनियर का हो सकता है।
कौन इंजीनियर?
साहब वही रमेश, वो आजकल काम से ज्यादा सीआरडी का काम करता है।
ए मिस्टर, तुम बहुत चिटक किस्म के आदमी हो।
नहीं नहीं,
एक जरा सा पुर्जा के ठीक किया, सीआरडी वालों की तरह पीछे ही पड़ गए। मेरी गाड़ी का कोई पुर्जा ढीला वीला नहीं है। अभी मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, हटा अपनी सड़ी हुई जीप को।
माफ करना मैडम, मैंने जिंदगी में एक ही काम सीखा है, मैं जिस मैदान में आगे बढ़ जाऊं उसमें कभी पीछे नहीं हटता। वैसे ये मेरी आदत है।
तुम्हारी आदत गई जहन्नुम में, मैं बाहर कैसे जाऊं?
ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर, चेहरे पर लाली पाउडर लगाकर, सड़क पर मनचलों को पागल करने से घर पे बैठना ही अच्छा है।
ए मिस्टर, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो।
कम कपड़े वालियों से बहुत ज्यादा बोलना मेरा पैदाइशी शौक।
शराब, अब मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और अगर मुझे गुस्सा हो गए तो
काट खाओगी। कोई बात नहीं, मुझ पर जानवरों के काटने का कोई असर नहीं होता।
यो?
क्या बात है बेटी?
देखिए ना डैडी, ये लुच्चा लफंगा मेरी गाड़ी को रोककर कैसे कैसे बकवास कर रहा है।
अरे मिस्टर रमेश, आइए आइए आइए। बेटी ये है मिस्टर रमेश, अपने फैक्ट्री के नए इंजीनियर, और ये है मेरी बेटी निशा।
हेलो।
हेलो,
चलो अंदर चलो। निशा
जी?
बेटी रमेश के लिए चाय ले आ।
हाँ डैडी।
अच्छा क्यों फोन किया था तुमने रमेश?
सर वो वाटर टैंक के असली कागजात तो ऑफिस में नहीं है, उनके प्लान्स, उनके एस्टिमेट।
अरे वो तो मेरे पास हैं, तुम्हें चाहिए?
जी हाँ, बहुत जरूरी है।
अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ले आता हूँ
चाय।
थैंक यू।
नो मेंशन। चाय अच्छी है ना?
जी हाँ बहुत अच्छी है। लेकिन ये क्या?
बिल।
काय का बिल?
चाय का बिल।
घर पे बुला के चाय पिलाने के पैसे लेती हो?
मैंने नहीं बुलाया आपको।
चलिए ना से, लेकिन ये क्या, एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है।
चाय की कीमत सिर्फ 1 रुपया, मगर अपने हाथों से बनाकर देने की सर्विस चार्ज 99 रुपए, आई मीन 99 रुपीज।
ये तो जुल्म है, धोखा है, दुनिया में ऐसा कहीं होता है?
और कार के एक नट को टाइट करने का 100 रुपया दुनिया के किसी मुल्क में होता है? ये धोखा नहीं था? चलो निकालो 100 रुपए।
ये लो।
ये क्या बदतमीजी है?
देखिए नाराज मत होइए, जब भी मैं किसी को टिप देता हूँ ना तो मुझे ऐसे ही प्यार से मारने की आदत है।
रमेश, रमेश
जी।
अरे ये ओरिजिनल तो नहीं मिली, कॉपी मिली है जेरॉक्स की, ये चलेगी?
जी हाँ। चलने के उतर, ला रसीद दे। ये क्या, रसीद 50 बॉक्सेस की और गाड़ी में 100 बॉक्सेस चढ़ा जा रहे हैं?
हाँ बात ये, वो
क्या, ठीक से जवाब दो।
अच्छा साहब मैं जवाब देता हूँ, तुम गाड़ी को लेके जाओ।
अबे ठहर।
अरे साहब यहाँ तो हमेशा ऐसा ही होता है।
ऐसा ही होता है? ये जो 50 बॉक्सेस चुराए जा रहे हैं ये किसके हिस्से में जाएंगे? जल्दी जवाब दे वरना पुलिस को बुलाऊंगा और वो लाते मार मार कर अगला पिछला सारा चोरी का हिसाब उगलवा लेगी।
पुलिस?
पिताजी पिताजी,
क्या है?
आपका सत्यानाश हो गया, और क्या होगा?
मार खाया गया बोलेगा?
हाँ आज आप मुझे मार लो, लेकिन कल पुलिस तुमको उल्टा लटका के मारेगी।
अबे क्या हुआ?
वो इंजीनियर है ना, इंजीनियर। हाँ। उसको सब कुछ पता चल गया। हाँ तैयार हो जाओ, हम लोगों का जेल जाने का टाइम आ गया।
अबे दिमाग मत फिरा, बता क्या हुआ?
वो अपना दगड़ू आ रहा, दगड़ू।
हाँ?
वो 100 बक्सों की रसीद था, वो पकड़ा गया। हाँ पिताजी अब क्या होगा, शादी तो एक तरफ, अब निशा मेरे मुंह पे थूकेगी भी नहीं। पिताजी आपने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया, कल तक आप मुझे गधे की औलाद कहते थे, अब सारी दुनिया मुझे चोर की औलाद कहेगी। पिताजी और चोर की औलाद के साथ निशा कभी शादी नहीं करेगी।
बचा उस दिल कहीं का, कुछ नहीं होगा।
है? वो कैसे?
इतिहास मत पूछो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो।
बाबूजी।
सुवर के बच्चे सब किया खराबे पानी कर दिया। अब ज्यादा वक्त नहीं, सुन, ये चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले ले।
जी।
इसके बदले 30,000 रुपए तेरे घर पहुंचा दिए जाएंगे। अगर तूने हमको फंसाने की कोशिश की, हम पर इल्जाम डाला, तो समझ ले तू भी मारा जाएगा और तेरे भी बच्चों का भी खून हो जाएगा। क्या बोलता है?
ठीक है बाबूजी, जैसे आप कहें।
चोर
बाबूजी, मुझे मार दो बाबूजी।
बच्चे, मैंने तुझ पे विश्वास किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तू भूखा मर रहा था, मैंने तुझको नौकरी दी, तूने मेरे साथ अगावादी कर डाली। बोल, कितना दिनों से गोलमाल चल रहा था? बोल, नहीं तो जान से मार डालूंगा।
जान से मारोगे तो आपको फांसी लग जाएगी।
रमेश, पुलिस को टेलीफोन कर दिया है ना?
जी हाँ, वो आती होगी।
मालिक, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मालिक मुझे क्षमा कीजिए, मालिक मुझे माफ कीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, इसी के बारे में मैंने कंप्लेन की थी।
चलो।
अच्छा, आप लोग चलिए, हम आते हैं। बहुत अच्छे बेटा रमेश, बहुत अच्छे। आज मुद्दत से तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में मैं था, आज वो कमी तुमने पूरी कर दी है। अब ये काम अधूरा मत छोड़ना, तलाश जारी रखना। मालूम करो और कितने चोर हैं और कितने चूहे हैं जो इस गोदाम में बिल बनाकर माल गायब कर रहे हैं।
दो और चूहे हैं सेठ जी, बड़े बड़े, इतने बड़े कि उनसे बिल्ली भी डर जाए, बस उन्हें पकड़ना है।
पकड़ो बेटा, जरूर पकड़ो। ऐसे ही चूहों ने इस देश की धरती में बिल बनाकर उसे खोखला बना दिया है, उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू सर।
जब तक जीजा जी का सत्यानाश नहीं हो जाता, हमको सब कुछ रहना पड़ेगा।
हाँ पिताजी, जल्दी से उनका सत्यानाश कर दो। अगर मेरी निशा के साथ शादी ना हुई तो मैं अपनी कनपट्टी पे गोली मार दूंगा और मर जाऊंगा।
नहीं बेटे, नहीं मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे?
ठीक है, मैं क्यों मरूं? जान फोकट में थोड़े आती है। ठीक है, तो मैं पिताजी को गोली मार दूंगा।
पिताजी को गोली मार दूंगा? अबे तू नाला नहीं मान सकता, मेरी गोली खाक मारेगा।
ओफो, बंद करो ये फजूल की बकवास और ये सोचो कि अब क्या होगा। भैया ने तो निशा का हाथ इसके हाथ में देने से साफ इनकार कर दिया।
मेरा कोई चांस है?
हाँ है, बिल्कुल है।
रमेश,
क्या बात है निशा?
मेरी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई, जरा चलकर ठीक कर दो।
अरे लेकिन यह काम बहुत है।
प्लीज चलो ना।
अरे साइकिल पर?
हाँ।
अरे चोट लगी?
हाँ।
कहाँ?
बता नहीं सकती।
भाई साहब आ रहे हैं, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ।
चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम ये बात सुनाकर उन्हें और दुखी करना चाहती हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक तो बेचारे, उनके सिवा हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग तो यतीम हो जाएंगे।
वो तो ठीक है, मगर बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उसे रोकना तो चाहिए। अजी कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
अरे तुम्हारे मुंह में डेढ़ मन खाक।
अरे क्या जी खाक, बताना तो पड़ेगा ही।
अरे मगर जीजा जी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
अरे छुपाएंगे।
क्या बात है अजीत, मैं कौन सी बात सुनूंगा तो गजब हो जाएगा?
नहीं मामा जी, मामा जी, वो निशा है ना बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ।
चुप,
बोलने दो उसे। क्या बात है रंजीत?
मामा जी है ना, वो अपनी निशा है ना बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ खेलती थी, नाचती थी, हंसी मजाक करती थी।
अच्छा, ये बात है? निशा,
डैडी, डैडी,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? निशा, तुम उस इंजीनियर के साथ घूमती फिरती हो, हंसी मजाक करती हो, खामोश क्यों? जवाब दो, क्या है, सच है?
हाँ डैडी, सच है, मैं उसे प्यार करती हूँ।
मैं नहीं मानता किसी प्यार व्यार को, दुनिया में मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? अजीत, ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम फौरन शादी की तैयारियां शुरू करो।
डैडी, ये क्या कर रही हो?
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अजीत, तुम फौरन जाओ, पंडित को बुला लाओ, मैं आज मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख पक्की करवा देता
हूँ। थैंक यू मामा जी, मेरे प्यारे मामा जी।
जीते रहो बेटा।
धन्यवाद।
अब चलो तुम भी तैयार हो जाओ, शादी में जितने भी मेहमान आएंगे उनकी देखभाल और स्वागत के लिए तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना होगा।
मैं स्वागत दरवाजे पे? अब मैं स्वागत कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अंदर मंडप पे बैठूंगा ना।
क्यों, तुम मंडप में क्या करोगे? तुम कोई पंडित हो? मंडप में तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे, रमेश और निशा।
क्या?
कौन है बे? अरे
अरे, फिर किधर खसक रहे ला रे? बोला था 3 दिन का बाद आएगा और साला 3 महीने का बाद आया है क्या रे? किधर और चक्कर तो नहीं चालू कर दिया? बोल, नहीं तो जूली तेरे को ऐसा चक्कर देगा कि जिंदगी भर चकराता रहेगा।
सर, आप मुझे नौकरी से अलग कर रहे हैं?
हाँ।
मगर क्यों? मेरी क्या गलती है? कौन सा कसूर हुआ मुझसे जिसकी आप मुझे ये सजा दे रहे हैं?
मैं बताऊं तो सुनो, नौकर को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए, मालिक की छोकरी पे डोरा नहीं डालना चाहिए, और तुम वही कर रहे थे। उसके बाद पूछो मेरी गलती क्या है
रंजीत। अरे उस पर क्यों भड़क रहे हो, बेचारा ठीक ही तो कह रहा है। तुम्हारी शराफत के गहराई में कितनी बदमाशियों की चालें थी वो हम जानते हैं, और हम जैसे वफादारों की बुराइयां करते रहे, दौलत और जायदाद के लालच में हमारी बच्ची निशा से प्यार का मीठा मीठा नाटक करते रहे।
नाटक? मेरा प्यार नाटक था? आप ये कहना चाहते हैं कि दौलत के लालच में मैंने निशा से प्रेम किया?
शट अप।
तुम क्या हो, तुम्हारा प्यार क्या है, तुम्हारी सच्चाई क्या है, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अब शराफत की ज्यादा दलीलें मत पेश करो और निकल जाओ यहाँ से।
लेकिन आप भी एक बात याद रखिए, जिस तरह मैं इस घर से निकाला जा रहा हूँ उसी तरह एक दिन आपके ये रिश्तेदार भी आपको इस घर से निकालना दें, इस बात से चौकन्ने रहिएगा।
रमेश तुम इतनी रात के यहाँ? रमेश डैडी, 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 डैडी।
नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है, मैंने गोयल साहब का खून नहीं किया।
योर ऑनर, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि मुलजिम रमेश ने ही गोयल साहब का खून किया। मसलन, रमेश गोयल साहब की इकलौती बेटी निशा से प्यार करता था, दोनों की शादी भी पक्की हो चुकी थी, लेकिन अचानक गोयल साहब को रमेश की असलियत, उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया। उन्होंने रमेश को घर में बुला के सबके सामने डांटा, उसके होने वाले रिश्ते को तोड़ दिया, और वहीं उसे नौकरी से भी निकाल दिया। और इन तमाम बातों की वजह से रमेश के दिल में नफरत की आग पैदा हो गई, और उस आग ने बदले की भावना को जन्म दिया। उसी रात रमेश ने गोयल साहब का खून करके अपना बदला ले लिया।
मुलजिम रमेश, तुम्हें कुछ कहना है?
यस योर ऑनर, यह सच है कि मैं गोयल साहब की बेटी निशा से प्यार करता था और अब भी करता हूं, और यह भी सच है कि उन्होंने हमारे प्यार पर एतराज किया, मुझे सबके सामने डांटा और नौकरी से भी निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कभी उनके लिए नफरत या बदला लेने की भावना पैदा नहीं हुई, और ना ही उस दिन के बाद मैं उनके मकान के साए से गुजरा।
कत्ल की रात तुम कहां थे?
मैं अपने घर में था।
कोई ऐसा गवाह है जो ये साबित कर सके कि तुम अपने घर में थे?
सिवाय भगवान के मेरे पास दूसरा कोई गवाह नहीं।
लेकिन है। मेरे पास है। मिस निशा, आप अदालत को बताएंगी कि कत्ल की रात आपने क्या देखा?
उस रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मगर परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इतने में ऊपर पिताजी के कमरे से चीखने की आवाज आई, मैं उठकर फौरन बाहर आई तो देखा पिताजी के कमरे से रमेश घबराया हुआ निकला, और मुझे देखकर फौरन भागने लगा।
निशा,
मैंने उसे आवाज दी, रमेश रमेश बुलाती रही, मगर वो भाग गया।
योर ऑनर, मुलजिम रमेश को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए मैं अदालत से 20 दिन की मोहलत चाहता हूँ।
रिक्वेस्ट ग्रांटेड, अगले महीने की 15 तारीख तक ये केस मुलतवी किया जाता है।
थैंक यू योर ऑनर।
गंगू,
क्या अबे?
इधर आओ। अबे तू आदमी है क्या आईना है? सामने अपुन का ही शक्ल दिखाई दे रहा है।
वही मैं सोच रहा था।
कौन है बादशाह तू?
मेरा नाम रमेश है।
कौन से जुर्म में अंदर आयल है?
खून के जुर्म में।
खून? नहीं बेड़ो, अपुन का हक बोलता है कि तू किसी का खून नहीं कर सकता।
तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं वाकई बेकसूर हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन जिससे प्यार करता था उसी ने मेरे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दे दी।
गवाही? कैसी गवाही?
यही कि जिस रात उसके बाप का खून हुआ उस रात उसने मुझे उसके बंगले में देखा।
इसीलिए प्यारे, दौलत वालों से कभी दिल लगाना नहीं चाहिए, वो कपड़े और गाड़ियों की तरह दिल भी बदलते रहते हैं। अच्छा बोल, कौन लड़की है, किधर रहती है?
इसी शहर में, जगन्नाथ स्ट्रीट में, बहुत बड़े आदमी थे गोयल वर्मा, उनकी बेटी।
जगन्नाथ स्ट्रीट वाले गोयल वर्मा की बेटी? क्या गोयल वर्मा का खून हो गया?
हाँ।
कब?
पिछले महीने की 9 तारीख को।
हाँ, तभी
अरे वो तेरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ गर्लफ्रेंड, वही उसकी आंख धोखा खा गई। अपन दोनों की शक्ल मिलती है ना, अपन खिसक गया और तू पकड़ा गया।
मैं समझा नहीं।
उस रात उस बंगले में उसने तेरे को नहीं अपन को देखा था, अपन गायला था उधर।
क्या बात करते हैं?
कसम पैदा करने वाले की, अपन उस बंगले में चोरी करने को गायला था, पर बदकिस्मती से तेरा वो गर्लफ्रेंड अचानक सामने आ गया, अपन उसको देखते ही वहां से चंपत हो गया।
सच कह रहे हो?
ईमान से, बस उसका भी कसूर नहीं है, उस बिचारी ने तो अपनी तरफ से सच ही बोला था।
तुम ये बयान कोर्ट में दे सकते हो?
कोर्ट? अरे नहीं भीड़ू नहीं, अगर अपुन ये बयान देगा तो पुलिस समझेगा कि खून अपुन ने किया है और तेरा फांसी का फंदा अपुन के गले में आ जाएगा।
गंगू, मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बचा सकता।
हाँ वो तो बरोबर है, लेकिन तेरे को बचाने को अपुन फांसी पर लटक जाएगा। अरे नहीं बाप नहीं, फोकर में फांसी पर कौन लटकेगा। हा?
मेरे बदले तुम यहाँ 3 दिन रह सकते हो।
3 दिन? क्यों बे क्यों?
कल तुम यहाँ से छूटकर जाने वाले हो, मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ रहना। वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, मैं निशा को उनके चुंगल से छुड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखकर वापस चलाऊंगा।
अगर 3rd दिन 4 बजे तू वापस नहीं आया तो अपन तो जेल तोड़कर भाग जाएगा।
वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, चाहे आंधी आए तूफान आए या काम अधूरा रह जाए, मैं 3rd दिन वापस जरूर आऊंगा। अब जल्दी से कपड़े बदल ले।